तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से श्लोक क्रमांक 72 शुरू करते हैं। कहाँ गया? कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजयः। तो अर्थ स्पष्ट है। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ, हे पार्थ, क्या तुम्हारे द्वारा यह ज्ञान सुना गया है? कैसे? त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रेण एक अग्र, चेतना को एक अग्र करते, एकाग्र करते, एकाग्र शब्द जानते हैं, ध्यान पूर्वक क्या सुना है? और अगर सुना है तो सुनने के बाद कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, हे धन को अर्जित करने वाले, क्या तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह यह नष्ट हो गया है? सम्मोह का अर्थ है अपने स्वरूप की विभ्रम, स्वरूप को भूल जाना, जो हम नहीं है उसको मानना और जो है उसको भूल जाना, और अज्ञान अपने स्वरूप का अज्ञान। तो इस प्रकार से क्या नष्ट हुआ है, ये प्रश्न भगवान यहां पे कर रहे हैं। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्रचित्र होकर सुना है? अगर अर्जुन को एकाग्रचित्त होकर सुनना है तो हमें कैसे सुनना है? बहुत ज्यादा एकाग्रचित्त, क्योंकि उनका तो अज्ञान था या बिल्कुल नहीं था, तो भगवान के प्रेमी भक्त है, लेकिन हमारा अज्ञान और सम्मोह बहुत बढ़िया से है। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो इससे एक चीज तो आप देख सकते हो कि जो व्यक्ति भगवद गीता को एकाग्रचित्त होकर के सुनेगा उसका मोह दूर हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि भगवद गीता सुन के वैराग्य होता है, नहीं होता है। एक बार मुझे से एक भक्त की पत्नी लड़ने के लिए आ गई, मैं प्रचार करने के लिए गया था, मुझे लगा था अप्रिसिएशन देने के लिए आ रही है, लेकिन अप्रिसिएशन थोड़ा अलग तरह, एक्चुअली उन्हें अप्रिशिएट ही किया, लेकिन जो सराहना था थोड़ा अलग स्टाइल का था। उन्होंने कहा कि मेरे पति हरे कृष्णा करें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपके लेक्चर नहीं सुनने चाहिए जो व्हाट्सएप से आते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अब इसमें क्या दिक्कत है? तो उसी प्रकार से तो हम देखते हैं कि हमारे लेक्चर तो कुछ नहीं होते, हम लोग तो जो आचार्य की बात है उसको एज इट इज रिपीट कर दे। जैसे आप लोग को आश्चर्य करेंगे, आज मैं दोपहर के समय आज अपने प्रभु जी अनंत कृष्ण प्रभु से वो टीका को पढ़ रहा था जो कल महाराज जी समझा रहे थे, जिसे वो बोल रहे थे, और हम लोग आश्चर्य करके, तो महाराज जो जो एग्जाम्पल बोल रहे थे वो एज इट इज टीका से था। अब देख रहे थे वो चीनी वाला एग्जाम्पल जो भी कुछ था, तो हम पहले मुझे लग रहा था महाराज कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली एग्जैक्टली टीका में था, एग्जैक्टली एज इट इज। महाराज ऐसे लग रहा था पी गए हों और बस बिल्कुल प्रस्तुत कर दे रहे, बिल्कुल पी के बोल रहे थे, इसे कहना चाहिए पी के, मतलब उसको शास्त्र को उदाहरण आत्मसात करके बोल रहे थे। तो हमें केवल जो शास्त्र का वचन है उसको एज इट इज प्रस्तुत करना है, फिर वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो कार्य करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकाग्र चित्त होकर के, चित्त को उधर उधर ना ले आकर के सुनता है तो उसका मोह दूर होता है। एकाग्र चित्त में एक और बात आपको याद आ रहा हो, कयाद्रु जो प्रहलाद महाराज को अपने गर्भ में धारण करी थी, वो अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाए जब नारद मुनि ने उपदेश दिया था। तो कौन उपदेश दे रहा है इसके साथ साथ कौन स्वीकार कर रहा है, इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है, है ना? वहां पे उनका चित्त लगा हुआ था, अरे मेरा बच्चा बचेगा कि नहीं, क्या होगा, हिरण्यकश्यप पति तो है नहीं, तो उनका चित्त नहीं लगा था, इसलिए उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। लेकिन प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में होते हुए भी एकाग्र चित्त होकर के सुने, उनको ज्ञान हुआ। तो जो सुनने वाला है उसका चित्त भी एकाग्र होना बहुत जरूरी है, नहीं लगता आप लोगों को? यस, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जब कोई डॉक्टर दवा देता है तो उसमें लिख देता है तो सुबह इतनी बार, दोपहर में इतनी बार, उसके बाद इतनी बार, तो बड़े एकाग्रचित होकर के सुन करके हम जब उसको ग्रहण करते हैं वैसे दवा लेते हैं तो कार्य करती है कि नहीं? चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो, तो किस प्रकार भगवान क्या बोलना चाहते हैं जब हम सुनते हैं एकाग्र पूर्वक, तो फिर हमें फायदा होगा। दो फायदे क्या सीखे हमारे, एक हमारा मोह नष्ट होगा और दूसरा हमारा अज्ञान नष्ट होगा। तो इस प्रकार शास्त्र, टीका को पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार शास्त्र और इस शास्त्र को बोलने, पढ़ने और श्रवण करने की महिमा का वर्णन हुआ। मतलब कि पिछले श्लोकों में, दैट मीन्स 68 से 71 में चर्चा किया था ना, शास्त्र बोलने का फायदा क्या होगा, पढ़ने से, बोलने से क्या होता है, पराभक्ति प्राप्त होती है, पढ़ने से क्या है, भगवान के की पूजा होती है ज्ञान यज्ञ से, और श्रवण करने से उच्चतर लोकों की, ध्रुव लोकों की इत्यादि की प्राप्ति होती है। अब भगवान यहां पर इस शास्त्र के अर्थ को समझने के संबंध में बोलेंगे और इस शास्त्र की अनुभूति के संबंध में बताएंगे, मतलब जो समझता है उसकी अनुभूति क्या होगी इसके बारे में बताएंगे। अनुभूति आप समझ रहे हैं, उसका मोह दूर होगा, उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। कश्चित शब्द यह अव्यय है, अव्यय का अर्थ होता है संस्कृत में कि इन शब्दों के रूप नहीं होते हैं विभिन्न प्रकार से। जैसे आप बोलेंगे रामः रामौ रामाः, किसी को याद हुआ, रामम रामौ रामान, ऐसे चलता नहीं, ऐसे ही रहते हैं, चा कश्चित ऐसे ही एज इट इज रहते हैं, रूप नहीं बनते। और यह प्रश्न को इंगित करता है, प्रश्न उठा रहे हैं भगवान कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ क्या, तुमने ध्यान पूर्वक सुना, अगर तुम पूर्ण रूप से समझे नहीं तो मैं फिर से इसे समझाऊंगा, यही इस प्रश्न से अभिप्रेत होता है। बड़ा सुंदर बात है, देखिए आध्यात्मिक जगत में डिग्री की कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को बोल रहे देखो ध्यान पूर्वक सुनो तुमको भक्ति शास्त्री की डिग्री प्राप्त होगी नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। क्या उस ज्ञान को मैंने धारण किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। इट्स नॉट सिंपली मैटर ऑफ स्टैंपिंग कि वहां कहां पर चलो ने पढ़ लिया गीता, पढ़ लिया हमने 10 बार, पढ़ लिया 5 बार, पढ़ लिया अच्छी बात है पढ़ लिया, लेकिन मेन बात है कितना उसको हम एकाग्र चित्त से अपने चित्त में आत्मसात किए। सिंपल सिंपल बात है कि जैसे हम लोग सीखते हैं गीता में कि इंद्रियों को वश में करो, भगवान की सेवा में लगाओ, तो केवल जान लेना ही आवश्यक नहीं, उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना। तो इस प्रकार से अगर, खैर यहां बात बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया है, तो भगवान कह रहे हैं मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुछ समझा रहे हैं शास्त्रीय ज्ञान, दो चीजें होती है सामने वाले की, पहली नहीं काफी सारी चीजें होती हैं कहना चाहिए, एक कि समझ में नहीं आया, दूसरा अगर हां भी बोल रहा है तो ये पूछना पड़ेगा कि समझ में क्या आया। आनंद कृष्ण प्रभु आज देख रहे थे ना, हम लोग कहीं एक उस श्लोक के कुछ अर्थ कुछ अलग ले रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग फिर उसको वापस आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक बार में वो चीज सही समझ में आ जाए। आपने महसूस किया है कई बार हम सुनते हैं फिर उस शब्दों के अर्थ को ठीक ठीक समझ पाते, और दूसरा बात अब एक और बात है, वो समझ भी पा रहा है लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए उसे थोड़ा वजन भी करना पड़ेगा। तो खैर एक आध्यात्मिक शिक्षक को बड़े धैर्य पूर्वक बातों को रिपीट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए बार बार एक ही बार में हर व्यक्ति समझ में नहीं आता है उसको। तो भगवान यहां पे कह रहे हैं, और अद्भुत बात यह है कि युद्ध करना है उनको, युद्ध करना है लेकिन भगवान को भी धैर्य है, तुम युद्ध करो या ना करो गीता पहले समझ लो उसकी, क्योंकि युद्ध करना महत्वपूर्ण नहीं था, युद्ध किस चेतना में करना है ये बहुत महत्वपूर्ण था। क्या इस बात का आप समझ पा रहे हैं, कृष्ण भावना में भी केवल क्रियाओं का महत्व है लेकिन क्रियाओं का महत्व से अधिक महत्व है किस भाव में कर रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, क्या तुम मोह से ग्रस्त होकर के युद्ध मत करो, या क्या कह सकते हैं कुड़ करके यज्ञ मत करो, सॉरी युद्ध मत करना। अरे अब कृष्ण बोल रहे हैं, अब मैं तो मेरा स्वरूप तो उनका दास के रूप में हो गया, क्या फंस गया, मुझे सेवा कर रही है, ऐसा नहीं है, पूरे उत्साह के संग करो। आप देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे अर्जुन पूरे उत्साह के संग अपना उत्साह को प्रदर्शित करेंगे कैसे, इज इंपॉर्टेंट तात्पर्य। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता ढंग से समझ ली है, ये नहीं है। अगर आपको याद हो एक शब्द आया था पिछले श्लोकों में, विमृश्यते विमृश्येतद अशेषेणा, जो कुछ भी मैंने बोला है उस पर विमर्शन करो, उस पर मनन करो, इन शिक्षाओं को समझो, बैलेंस करके समझो कि ये क्या चीज करना उचित है। गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन के साथ साथ व्यक्ति के स्वयं के विवेक का निर्माण भी होना चाहिए। मैं ये बात आप जब मैं क्लास दे रहा था तो शायद थोड़ा क्लियर नहीं कर पाया था कि भाई काम से या माया से मुक्त होना है तो केवल भगवान का आश्रय लेना है, ये तो जरूरी है, लेकिन अपने विवेक का निर्माण भी करना है। प्रभुपाद जी इस संबंध में काला कृष्णदास की कथा कहते हैं, तो कहते हैं कि देखिए जब तक व्यक्ति का खुद का डिटर्मिनेशन नहीं है, खुद की इच्छा नहीं है, तो भगवान भी उसे कैसे मदद करेंगे। खुद की भी तो कुछ इच्छा होनी चाहिए कि मैं बचूं, तब तो भगवान उसको बचाएंगे। तो यहां पे खैर बात यह है, मैं खाली बोलना यह चाह रहा हूं कि भगवद गीता को सुन कर पे विचार करके हम, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रीय विवेक हमारे जीव के का निर्माण होना चाहिए, उसके आधार पर उसे कार्य करना, फिर भगवान सारी शक्ति देते हैं। बहुत सिंपल शब्द में कहा जाए गॉड हेल्प्स those who help themselves. अपनी अपनी सहायता स्वयं करने के लिए व्यक्ति को मतलब विवेक का निर्माण होना चाहिए. विवेक समझते ना, सही गलत की बुद्धि. ओके हाँ, सद असद विवेक, यस, क्या सही है क्या गलत है समझ में आना चाहिए. यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है. मतलब कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, भगवान श्लोक वो नंबर वो समझ में नहीं आया तो भगवान फिर से बताएंगे. अध्याय 6 में आपने ये बताया था, वो समझ में नहीं आया. क्या आप लोग का ऐसा अनुभव होता है कि कई बार भगवत गीता के किसी श्लोक पे आप सोचेंगे, आप कहेंगे समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ता हूं उसको, हुआ ऐसा? ये आपका सही बोल रहे हैं कि आपने जो पहले पढ़ा और आप पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे अंतर होगा. लेकिन एक मैं अलग चीज बोल रहा हूं, इससे कोई श्लोक आपको याद आया, मान लीजिए माम च अव्यभिचारिणा, तो आप कहेंगे यार इस अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ क्या है, तो फिर जाकर के आप देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं, आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी कभी किसी श्लोक को इसे हम ऐसे समझे जैसे गाय घास खा लेती है, घास तो खा ली, उसके बाद फिर वो पुनः चरवण करती, फिर वो बाहर आता है, फिर चबाती, उसको आसदन करती है. तो ऐसे हम लोग देखते हैं, हाँ पहली बार हमको लगता है हाँ शास्त्र की वो श्लोक समझ में आ गया, फिर उस पर जाते हैं, अरे नहीं अभी समझ में नहीं आया, और उसकी गहरी समझावट हो. तो खैर भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि कोई अंश विशेष अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं. जलेगी नहीं. वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है. देखिए कृष्ण जैसा प्रमाणिक गुरु, भगवान जैसा गुरु कैसे हो सकता है? भगवान के पास तो अनंत ज्ञान है. माइक पे बताइएगा गुरु प्रश्न का उत्तर जानते हैं. भगवान के पास तो अनंत ज्ञान है, तो भगवान जैसे प्रमाणिक गुरु का अर्थ क्या हुआ? भगवान ही ज्ञान देंगे क्या? माइक पे बोलिए. यस 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 यस, बोलिए बोलिए, ऑन तो करिए.
भगवान कृष्ण ये ज्ञान जो है वो नारद जी को गुरु परंपरा में जिससे दिया, तो उनके थ्रू जो हम आते हैं तो वो भी प्रमाणिक हो जाता है.
अच्छा बात उन्होंने बोली, मैं इस चीज को याद कर रहा था. एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः. भगवान कृष्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, तो सूर्यदेव भले ही भगवान नहीं हो लेकिन उस ज्ञान को यथावत अपने शिष्य को देने से उस शिष्य को भी, शिष्य मतलब मनु महाराज को देने से उनको भी पूर्ण बोध प्राप्त हुआ. तो हम प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने सुना और हम उनके अपने गुरु महाराज से वैष्णव से सुनते हैं. परंपरा में ज्ञान प्राप्त होने का यही लाभ है कि जिसे साक्षात भगवान से सुन रहे. बहुत अच्छी बात है, कितना अद्भुत जादुई बात है ये कि परंपरा में जो ज्ञान है उसको रिपीट करने मात्र से हम भी शुद्ध होते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है. कुछ बोलना चाहते हैं अनंत कृष्ण? यस प्लीज स्पीक.
रहा बात अनंत ज्ञान का, तो वो तो है, जैसे चतुर्श्लोक के भागवतम है तो चार श्लोक में तो अनंत ज्ञान है, उसी को रिपीट करना है तो अनंत ज्ञान भी ट्रांसफर हो रहा है.
यस, अनंत कृपा भी ट्रांसफर हो रही है. जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र केवल महाप्रभु के समय में काम करता था और अब नहीं करता, अभी भी उतनी शक्तिशाली है. हमें केवल अगर हम नम्रता से हरि नाम करते हैं तो हमको उतना लाभ प्राप्त होता है, मतलब पूर्ण लाभ प्राप्त होता है. ठीक है, या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता सुनता है उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है. कल भी महाराज बड़ा अच्छा बताया था ना, हस्त नस्त नताप वर्ग अखिलोदार किशोराकृति. तो भगवान अपने भक्तों के हाथ में अपवर्ग दे देते हैं, अर्थात भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा कितने लोग का उद्धार किया जा सकता है. इसलिए जैसे हम अन्य वस्तुओं को पढ़ते हैं ताकि अगर हमारा कल्याण हो, ऐसे भगवद गीता को पढ़ना चाहिए बड़े मनोयोग से, हम अपना कल्याण कर सके और दूसरों को भी मदद कर सके. भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है. ये श्रद्धा एक प्रामाणिक प्रतिनिधि को होती है. आप देखिए भगवद गीता, मेरी माता जी भी बता रही थी कि वह एमए में पढ़ती थी भगवद गीता, तो हमने कहा आपने गीता पढ़ी थी तो मुझे पढ़ाई क्यों नहीं, कहते उस टाइम तो हम लोग से मजाक में पढ़ लेते थे कि संस्कृत के दृष्टि से पढ़ लेते थे. लेकिन ये विश्वास नहीं होता है कि सीधे भगवान ने बोली है. जैसे आप जानते हो कुछ पथ पंथ हैं जो कहेंगे शिव बाबा ने बोली है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है, पथ बता रहे हैं, भक्त का पूरा विश्वास है कि साक्षात भगवान ने बोली है और मेरे पास एज इट इज आ रही है जैसे भगवान ने बोली, ये विश्वास होता है. जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है. इस विज्ञान को समझिए, जैसे भगवान ने बताया कि अपने कर्मों को मुझको समर्पित करो, तपस्या मुझको करो समर्पित करो, जो दान देते वो मुझको दो। तो प्रभुपाद जी और उनके प्रतिनिधि या अन्य भक्त हमको बताते हैं, तो हम जब उसके अनुसार करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। मेक सेंस? और आप देखिए कि भगवान भी अर्जुन को एक विधि बता रहे हैं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार से एक वैद्य विधि बताता है, भगवान भी ऐसी विधि बता रहे हैं। वो नहीं कह रहे कुछ मत करो तुम मेरे को प्राप्त कर लोगे, कहीं गीता में सब बोल रहे हैं कि कुछ मत करो, शरणागत हो जाओ, लेकिन शरणागत होने का मतलब क्या है? शरण में आ गया उसके बाद बस चद्दर तानी सो गए? यस, शरण का मतलब अनुकूल संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, इसे बहुत सारे कार्य करने होते हैं, isn't it? शरण में आने के बाद नहीं करने होते। तो यानी कि शरण का मतलब क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य कर रहा है व्यक्ति। मेक सेंस? तो यहां पे कहने का अर्थ ये है कि प्रामाणिक विधि से, प्रामाणिक व्यक्ति से सुन करके अपने कर्मों को कृष्ण को जोड़ना सीखा और वो तुरंत मुक्त हो गया। आपको बात बहुत आसान लगती होगी, लेकिन जब नए लोगों को बताएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण कहाँ है जो अपने कर्म में उनसे जोड़ू। बहुत बार लोग समझ नहीं पाते अपनी इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित का मतलब क्या, आंखें निकाल के देते ना क्या करें, इन सब वाक्यों का अर्थ ही समझ में नहीं आता लोग। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं। या मान लीजिए किसी कोई भक्त, कितने लोगों को गीता पता हो भी कि क्या है कार्य, सारे कर्म करो और अकर्म पे अधिकार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ समझते नहीं कि फल किसके लिए कर्म करना है। इजंट इट? आप समाज में देखते हैं कि नहीं देखते? तो इसलिए भक्तों के द्वारा, भक्तों के मुख से और जो उस भगवद गीता को जी रहे हैं उनके द्वारा सुन करके हम समझ पाते हैं कि हमें किस प्रकार से मुक्त होना है। मुक्ति का अर्थ ही है भगवान की सेवा में नियोजित होना। ओके? तो अज्ञान के अंधकार को पार कर लेगा। इस कारण से प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं कि अन्य उपन्यासों से अलग है, क्योंकि उपन्यास पढ़ करके हम संन्यास नहीं लेते कि नहीं उपन्यास का मतलब आपने पढ़ाई नहीं, देखो अर्थ भी पता नहीं प्रभु जी को, कितने शुद्ध भक्त हैं। उपन्यास मतलब होता है नॉवेल, कहानी, किस्सा, काल्पनिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमको पहले से ही पता है कि वो कल्पना है, फिर भी उसको पढ़ते हैं, है ना आश्चर्य की बात? हाँ, यस, हम जानते हैं कि उसमें लिखा भी रहता है कि इसमें जितने भी मतलब किरदार हैं, पात्र हैं, वह सब झूठे हैं, फिर भी व्यक्ति उसको पढ़ता है और रोता भी उसको पढ़ पढ़ कर। तो खैर, ऐसा उपन्यास पढ़ के कोई संन्यास नहीं लेगा, कोई भक्ति भी नहीं आएगा। भगवान की भगवद गीता को सुन करके बहुत सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर बात 11:5:33 में पढ़ रहा था मैं, बहुत सुंदर बात कि भगवान को प्रणाम करे, वो चिंता नहीं करे कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि कब भव सागर पार हो गया। बहुत सुंदर बात लिखी थी, आप लोग पढ़ सकते हैं टीका में भी दोबारा, बहुत अच्छा बात लिखा था कि भक्त को केवल भगवान के शरणागत होना है, केवल भगवान की सेवा करनी है, श्रवण कीर्तन करना है, उसे मालूम भी नहीं चलेगा कि भव सागर कब पार हो गया। जैसे वही वाली बात है, गोवत्स पदम, बछड़े के खोर कब में जो पड़ा हुआ पानी है, उसे कितने पानियों को, कितने गड्ढों को आप ऐसे पार कर जाते हो, ध्यान ही नहीं देते, नहीं देते ना। तो ऐसे आचार्य बता रहे हैं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान पार कर देते। आप पार हो चुके हैं, मुझे टाइम लगेगा ठीक है। जैसे कि नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा भौतिक शरीर गिर गया और कब मेरा आध्यात्मिक शरीर आ गया, जैसे बिजली कड़कती तो एक साथ ऐसा होता है। चलिए एक श्लोक और देखते हैं। अर्जुन वाचा, अर्जुन हमारे एक कस्टमर रिव्यू दे रहे हैं। कस्टमर रिव्यू होता है, रिव्यू का मतलब अन्य लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा, तो सुन करके हम लोग भी हाँ हम भी लेंगे इसको। तो इसी प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। नष्टो मोह स्मृतिर् स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्ततोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। बहुत सुंदर श्लोक है, आप देख लीजिएगा। पहला चीज क्या है, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या वो मोह था वो हम चर्चा करेंगे। स्मृतिर लब्धा, मुझे स्मृति आ गई। कैसे, त्वत प्रसादान मया च्युत, आपकी कृपा से। हे अच्युत, अच्युत का एक अर्थ क्या था, जो अपने भक्तों पे कृपा करने से चुकते नहीं है। तो त्वत प्रसादान, आपने कृपा करी अच्युत, इसलिए उनको संबोधित कर रहे हैं। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं क्या अपनी स्थिति में मैं समझ गया, और गत संदेह, मेरे सारे संदेह नष्ट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं जेल में क्लास दे रहा था और उसका नाम शायद कृष्णा था या आकाश था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किनारे में बैठा कृष्णा ही था, तो कृष्ण बोल रहे थे कृष्ण भक्त बोल रहे थे, तो मुझे मुझे कभी कभी लगता है ये मैं चार माला कर रहा हूँ, मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा तो मैंने कहा नहीं भाई, अगर आपको ऐसा लगता तो दुनिया भर में जितने भक्त हैं वो क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण की सेवा करते समय। फिर मैंने उनको समझाया भी, तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर संदेह हो गया तो व्यक्ति भक्ति में प्रयत्न नहीं करेगा। देखिए, जो भी हम भक्ति में तपस्या कर रहे हैं उसमें मुख्य बात है श्रद्धा। श्रद्धा का डीजल फ्यूल रहेगा तब आप उस दिशा में प्रयास करते रहेंगे, और वो श्रद्धा हमें शास्त्र सुनने से, स्पेशली भगवद गीता भागवतम को सुनने से, नियमित रूप से सुनने से आती है। तो अगर इस संदेह होता ही रहता है, संशय होता रहता है, तो उसका निवारण होते रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। कर तो सकता है, करना छोड़ देगा ऐसे कहा जाएगा, तो इसलिए बचना चाहिए इस बात से। संदेह जैसे भी संदेह आए तुरंत शास्त्र सुनना चाहिए, नहीं शास्त्र सुनते रहना चाहिए ताकि संदेह आए ही नहीं। ठीक है, करिष्य वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। स्मरण शक्ति मतलब क्या, बाण चलाने की शक्ति, या भूल गए थे कि बाण कैसे चलाया जाएगा, क्या उनका कर्तव्य है, क्या ये भूल रहे थे, तो समझ में आ गया। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। उद्यत मतलब उद्यम करने के लिए तैयार, यस, प्रयास करने के लिए तैयार। ठीक है, देखिए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूछे जाने के बाद अर्जुन श्रवण के बाद अपने अनुभव को बताते हुए उत्तर देते हैं कि उन्हें समझ में आया। बोले थे ना, प्रश्न किए थे, तुम्हें समझ में आया क्या, तो अर्जुन ने क्या बोला, मुझे समझ में आया, और समझ में आने के कारण क्या था, भगवान ने क्या बोला था, समझ में आने के कारण तुम्हारा अज्ञान और सम्मोहन दूर होना चाहिए। तो यहां क्या अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मुझे समझ में आया, जरा देखें वापस श्लोक में, वो ऐसा नहीं बोले कि मुझे समझ में आया, वो ये बोल रहे हैं कि समझ में आने के कारण जो प्रभाव है उसको प्रकट कर रहे हैं, कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, अर्थात समझ में आ गया। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, क्योंकि मेरा नष्ट हो गया अज्ञान, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, अर्थात उसके रिजल्ट के द्वारा, रिजल्ट को बोल करके वो कह रहे हैं समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, समझ में तो आ गया, लेकिन मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो थ्योरी रह गया ना। आपकी कृपा मात्र से मेरा मोह या अज्ञान, जो ज्ञान के विपरीत है, वह समाप्त हो गया, अर्थात तत्प्रसादान मैं आ चुका, आपकी कृपा से। एक और अद्भुत बात है कि जब हम भगवान की वाणी को सुनते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, और जब इसको हम भक्ति के एटीट्यूड में, भक्ति के माध्यम से, भक्ति के भाव से सुनते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक अद्भुत बात है कि दुनिया में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन छोटा सा प्रयास भगवद गीता को सुनने का, समझने का, भगवान को प्रसन्न कर देता है, और उनकी कृपा से भगवान स्वयं ही हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं। आज मैं यही चर्चा इनसे 10.11 में कर रहा था कि हम श्रवण कीर्तन तो बाहर से कर रहे हैं लेकिन भगवान अपना कार्य अंदर से कर रहे हैं। मैं रिपीट करूं, समझ में आया, श्रवण कीर्तन तो बाहर से कर रहे हैं आप, भगवद गीता सुना, जैसे हमने कल सुन रहे थे कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण के कर्णों को अमृत लगती है वो कथा, और कृष्ण हमारे हृदय में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो जब अमृत लगेगा, जहां कहीं अमृत बट रहा है तो व्यक्ति दौड़ के जाएगा ना, तो इस प्रकार से भगवत, इसी तरह गीतामृत बोला जाता है, तो भगवान के गीता को सुन रहा है कोई, भागवत सुन रहा है, तो भगवान उसके हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं। माइक बोलिए, अगर कुछ बोलना चाहते हैं।
व्यक्ति किसी के बारे में कहता है कि दशरथी दास ऐसे हैं, तो कान खड़ा हो जाते हैं।
यस,
मेरे बारे में,
मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। स्पेशली अगर किसी के गुणगान करिए, जैसे आप किसी ने कुछ खाना बनाए हो, क्या बोली खाना बहुत अच्छा बना, क्या दोबारा पूछा, क्या दोबारा पूछता है ऐसे करके। हाँ, तो यहाँ तो स्पष्ट हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे, और फिर अपने आप ही अज्ञान हमारे हृदय से नष्ट कर देंगे। ठीक है, मोह मतलब देखिए हमेशा यही होता है, अटैचमेंट रिजल्ट है मोह का। मोह मतलब है अपने स्वरूप को भूल जाना और जो नहीं है उसको मानते रहना, ये मोह होता है। समझ नहीं पाना कि मैं हूं कौन, मुझे क्या करना चाहिए, ये मोह होता है। ये उनको समझ आ गया मैं दास हूं, इतना आसान है। हाँ, इनको समझ में आ गया कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। यस, अगर ये समझ में आ जाए कि कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा में लगे जाए, तो फिर क्या दिक्कत है। यही तो सारी प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आता सुनने के बाद। देखिए प्रभुपाद जी बहुत सिंपल ही बताते हैं बात को, भगवद गीता को सुनकर व्यक्ति को कृष्ण का शरणागत होना चाहिए। सिंपल, मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। एक बहुत सुंदर इस संबंध में मैं समझता हूं टीका में ही आया था कि जो व्यक्ति एम्परर सम्राट की सेवा कर रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वह अन्य जो निम्नतर कह सकते हैं मंत्री इत्यादि है, उनकी सेवा से वो निवृत्त हो गया, उसको सेवा नहीं करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण की सेवा कर रहा है। ओ, मैं भागवतम की टीका से बोल रहा हूं, क्या है वो, सर्वात्मनः यः शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। जब कृष्ण की सेवा कर रहा है, सम्राट की सेवा कर रहा है, तो फिर उसे अन्य पितरों की देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता कम से कम ऋण से मुक्त होने के लिए करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि वो ऋणी है, सेवा भक्त सबकी करते हैं, लेकिन कृष्ण के संबंध में ही करते हैं। ठीक है, उनकी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अर्थात हाँ, स्मृतिर लब्धा, अर्थात मैं वस्तुओं को के होना नहीं चाहिए, को होना चाहिए, मैं वस्तुओं को उनको भी नहीं होना चाहिए, वस्तुओं को उनके सही स्वरूप में समझ पा रहा हूं। इस कारण से मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। अब सही स्वरूप में समझने का क्या अर्थ है, इसको जरा देखिए, बहुत सुंदर बात समझाई जा रही है, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनिएगा। तो यह कहा जा रहा है, लोगों का मोह क्या है कि सभी जीव जैसे देवता और इंसान देहाभिमान से ग्रस्त हैं, और यह सोचते हैं कि वह अपने अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र हैं। ये मोह समझ में आ रहा है, ये है मोह। ये बहुत ही गंभीर लाइन है। इस जगत में हर व्यक्ति सोच रहा है कि वह कार्य करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं। हाँ, स्पेशली चलो भाई हमने कुछ पाप किया, पुलिस नहीं पकड़ी, अब क्या मजे करो, क्या दिक्कत है। लेकिन देखने वाले तो व्यक्ति हैं, और सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। वस्तुतः अगर और आप गहराई में विचार करें, तो आज भौतिक जगत का निर्माण ही उन लोगों के लिए हुआ है जो स्वतंत्र होकर के कार्य करना चाहते हैं। कितना अमेजिंग है ना ये, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं। यहां तक कि जब आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तो इंद्र भगवान से ही पंगा कर रहे हैं, भगवान से युद्ध कर रहे, इतना उनका स्वतंत्र अभिमान हो गया। और इस चीज को ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रतघीष मानिना, मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि मैं आपको, अपने आप को आपसे एक पृथक ईश्वर के रूप में सोच रहा था, ब्रह्म स्थिति में ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो सभी का यह अभिमान है, एटलीस्ट देवता के रूप में, कि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं। शिव जी बोलते हैं कि भगवान, जब वो भगवान से युद्ध करते हैं, तो कहते हैं कि मैं आपकी माया से मोहित होकर सोचने लगा कि मैं आपसे अलग स्वतंत्र ईश्वर हूं। चैतन्य भागवत में भी इस बात को आता है। तो ये जो है मोह है, और इसके कारण व्यक्ति सोचता है कि वह ईश्वर है, भगवान से स्वतंत्र। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपको याद हो तो यमराज जी क्या बोलते हैं, कहते हैं जैसे बैल नाक में नथन डाल करके उसको गोल गोल घूमने के लिए बाध्य हैं, ऐसे जितने भी जगत में लोग हैं सब आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। टू दैट इफेक्ट ही सेज, अगर आपको याद आ रहा हो इस बात को, वो बोलते हैं यमराज जी। जब उसे पूछा गया था कि आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, क्योंकि वो और भगवान हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं बेटा मैं जो है स्वतंत्र नहीं हूं ऐसे करके। तो खैर, तो भक्त लोग समझते हैं लेकिन अन्यथा लोग समझ नहीं पाते। तो अपने अपने कर्म को करने में स्वतंत्र हैं। देवता की उपासना इंसान यानी मनुष्य करते हैं और देवता उनको वर प्रदान करते हैं जैसी उनकी इच्छा होती है, परंतु सच्चे ईश्वर कौन है ये बात पूछी जानी चाहिए। अर्थात ये सब मोह है कि लोग सोचते हैं कि हम देवता की पूजा कर रहे हैं और देवता ने मुझे फल दिया, जबकि हम श्रीमद् भागवतम से क्या सुनते हैं, देवता कर्म सचिव है, हमारे कर्म के अनुसार दे रहे हैं, और सब कुछ कौन कौन क्रियान्वित कर रहा है, कृष्ण भगवान परमात्मा। अच्छा, आपने कभी सोचा इसके बारे में कि देवता वाकई स्वतंत्र हैं देने में क्या? नहीं, 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 माइक पे बोलिए, ये चीज थोड़ा, चलिए आज हम इस पर बहुत श्लोक पे विचार नहीं करेंगे, लेकिन कभी ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सोचिएगा कि क्या वाकई देवता स्वतंत्र हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि यमराज जी वही पनिशमेंट देते हैं एग्जैक्टली जैसा उनको बताया गया है कि अगर इस व्यक्ति ने ये पाप किया है तो उसको ये दंड मिलना चाहिए, उस विधान का उन्होंने नहीं, वो नहीं लिखते हैं, भगवान के द्वारा सेट कर दिया गया है कि ये सारे ये धर्म शास्त्र है, ये धर्म है और इसके अनुसार बनाया गया है, इसके अनुसार व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए।
भगवान के भय से ही सूर्य ताप करता है वो
यस यस, जो भय का मतलब भगवान की आज्ञा से सब कुछ चलता है। यस, माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते तो माइक तोड़ा, बस बस घुमा दीजिए। हाँ जी, बस 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 जल्दी, टाइम नहीं है।
मतलब उनको पावर, उनको पावर दे दी जाती है, फिर उसको किसी को भी दे सकते, जैसे कि हम देखते हैं
उनको पावर दे दी जाती है में। यस, लेकिन फिर भी उनको विधि का पालन करना पड़ता है, आप देखिएगा,
क्योंकि नरसिंह देव बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान क्यों दिया।
हाँ, इसका मतलब आगे आगे ऐसा नहीं देना है,
तो इसका मतलब ये,
इसका मतलब डर है।
एक चीज तो ये तो समझ में आती है कि उनको पावर मिल गई है, तो वो पावर किसी को भी मतलब अपने सामर्थ्य तक दे सकते हैं,
एक बात
इंडिपेंडेंटली
ऐसा, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि वह सोच रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं।
कौन देवता?
देखिए, आप ऐसा समझिए कि जब किसी अधिकारी को पावर दी जाती है तो उसे अपेक्षित है कि उस पावर का दुरुपयोग ना करे, मतलब उसके ऊपर कोई है कि अगर दुरुपयोग करेगा तो उसे डांट पड़ेगी। ब्रह्मा जी को डांट पड़ी, ब्रह्मा जी के ऊपर कोई व्यक्ति है, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रायः, अच्छा दूसरा, भगवान ऐसे लोगों को नहीं देते हैं शक्ति जो उसका दुरुपयोग करेंगे, लेकिन एक और बात देखना चाहिए कि तपस्या जो कोई कर रहा है उसको फल मिलना चाहिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। ब्रह्मा जी को एक तरह से देखा जाए तो बाध्य होकर के वो देना पड़ा, इतना उसने तपस्या किया था, धुआं निकाल दिया था जैसे कहना चाहिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे में मना कर पाना। और वस्तुतः हम लोग जो भागवतम से सुनते हैं वह है कर्म सचिव, देवता हमारे कर्मों के अनुसार ही देते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते। ज्ञान के विपरीत मेरा यह मोह था। कुछ आप लोगों के मन में कोई डाउट है या कुछ प्रश्न है तो कुछ कह सकते हैं। आनंद कृष्ण, आपके मन में कुछ डाउट है? केवल वैष्णव और भगवान अहेतु की कृपा करते हैं,
और देवता जो है वो व्यापारी के समान है कि जितना हमारे पैसे 10 रुपए देंगे तो वो 10 रुपए कहीं चीज देंगे।
यस,
लेकिन भगवान माता पिता के समान है कि वो नहीं देखते हमारा प्यार, देते वो अनलिमिटेड पूरी संपत्ति भी।
लेकिन मेन बात यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कि इंडिपेंडेंट नहीं है वो, कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं। देखिए, एक होता है कि स्वतंत्र मानना, अब फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, हर देवता हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मान रहा है और वह कार्य कर रहा है यह मानते हुए कि वह स्वतंत्र है, यहां कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है, यह स्थिति है। आप ये देख रहे हैं मोह के कारण हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं और ऐसे ही देवता भी स्वतंत्र हैं, और आप लोग उदाहरण भी ऐसे दे रहे हैं, हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा, ये सब हो सकता है, लेकिन क्या वो वाकई स्वतंत्र है? नहीं है। और इस चीज को भगवान गीता में स्वयं बोलते, त्रिभिर गुणमयर भावेर ए भी सर्वम इदम जगत, कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो उन गुणों के द्वारा बाधित नहीं, बंधा हुआ नहीं हो, देवता हो चाहे यक्ष हो चाहे राक्षस हो चाहे कुछ भी, सब कुछ गुणों के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। माइक पे बोलिए,
हमारे
हमारे साथ जो कार्य होता है उसमें पांच चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें जगत देवताओं
हमारे साथ जो कार्य नहीं होता है, कोई भी कार्य होता है उसमें पांच कारण होते हैं।
सिमिलरली देवताओं के साथ भी वैसा ही है,
सभी के संग ऐसा होता है। ठीक है, ज्ञान के विपरीत मेरा यह मोह था कि प्रकृति ही पूरे जगत की कारण है। इसके विपरीत मैं सोचता था कि भगवान के कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, और वह लोगों के कार्यकलापों के प्रति उदासीन है। इस प्रकार का मोह मेरा आपकी शिक्षा प्राप्त करके नष्ट हो गया। तो क्या क्या चीजें हमने सीखी? एक कि मोह में क्या करते हैं, देवता इत्यादि सब सोच रहे हैं कि हम लोग सब स्वतंत्र हैं, और यहां पे अज्ञान के कारण सोच रहे हैं कि प्रकृति सब कुछ कर रही है और भगवान का कोई रूप नहीं है, वो अगर भगवान है भी तो हमसे क्या मतलब है, तो उदासीन पड़े हुए ऐसे करके। तो ये सब चीजें उनके शिक्षा से नष्ट हुआ। जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में सुना था, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर शब्द क्यों बोल रहे हैं? कंट्रोलर दिखाने के लिए कि भगवान सबके हृदय में। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम अर्थात सर्वदेवानाम सर्वजीवानाम, सभी जीवों के सभी देवताओं के हृदय में है और वो कंट्रोल कर रहे। अब तो स्पष्ट है, ब्रह्मा जी भी जो आज्ञा दी वो भगवान ही उनको बोले। अद्भुत बात है कि भगवान ही अलाउ किए, बाद में भगवान डांट भी रहे उनको, कह रहे तुमने ऐसे वरदान क्यों दे दिया। ठीक है, अब मुझे उन भगवान के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो अपने स्वरूप और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये 15वें अध्याय में भी भगवान इस बात से बताते हैं अपने स्वरूप के बारे में कि मैं पुरुषोत्तम, जानाति पुरुषोत्तम ससर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है और पूर्व सर्वभाव से मेरी पूजा करता है। ठीक है, वह स्वरूप जो ज्ञान और आनंदमय है, वह ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ रहा होगा कि भगवान का स्वरूप भी है और स्वरूप जो है वो प्राकृत नहीं है, चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है। वह भगवान जो गुणों के समुद्र हैं, जैसे गुणों को बता रहे हैं, सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता सत्य संकल्पता, इनके हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ समझते ही हैं, सब कुछ जानने वाले, सारी शक्तियों से युक्त और जो वो चाहते हैं संकल्प मात्र से वो सिद्ध हो जाता है। जस्ट एसेंस में बताया मैंने आपको, जो अपने भक्तों के मित्र हैं यद्यपि वह सभी के स्वामी व ईश्वर हैं। इसमें क्या स्पेशल लगा आपको? कुछ स्पेशल लगा लाइन में? बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी आपके मित्र हैं। कितना अमेजिंग है ना ये, कोई भक्ति बहुत बड़ा होता है तो कहेगा जैसे था द्रुपद और द्रोण, अरे भाई मित्रता तो बराबर वालों में होती है। तो ये एक अद्भुत बात है कि भगवान बड़ा इनकंसीवेबल है, अचिंत है कि भगवान इतने बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, असीमित रूप से बड़े हैं, ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी एक छोटे से जीव की भी मित्र हैं एकदम। यस, जो ब्रह्मांड में सभी जीवों के विभिन्न कर्मों के अनुसार, इससे पहले मैं वापस इसमें आना चाहता हूं कि मेरे मित्र हैं अर्थात मैं उनसे प्रेममय संबंध स्थापित कर सकता हूं। मैं कुछ अगर फल अर्पित करूंगा तो कृष्ण उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं जल अर्पित करता हूं तो भगवान ये नहीं कहेंगे अरे मुझे भगवान को आपने केवल जल दिया, कम से कम रसना तो देना चाहिए था या कुछ तो उसमें गुलाब जल कुछ तो मिलाते नहीं, जल देने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते। क्या था वो? सेवा मनग मनागपी तथा बहुधा भ्युपैती, अपने सेवक अपने भृत्य की थोड़ी सी सेवा को भी भगवान बहुत मानते हैं। कल भी हम सुन रहे थे ना उदार, यही बात थी, भगवान बहुत उदार है। जो ब्रह्मांड में सभी जीवों के विभिन्न कर्मों के अनुसार अपनी इच्छा मात्र से और अपनी शक्तियों अर्थात जीव समय और प्रकृति के द्वारा उनके शरीर बनाते हैं। इलाइन चलो समझ लीजिए, भगवान की इच्छा से, जीव की इच्छा से, काल शक्ति से और प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर मिलते हैं। ये शरीर किससे बना हुआ है? पृथ्वी जल, हाँ, पंचभूत महाभूत से। तो ये तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। इच्छा किसकी थी? मेरी। कालांतर में समय के अनुसार शरीर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको उम्र कितनी हो गई? 23। तो 23 साल पहले इस शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई कि नहीं? जो शरीर आपके सामने है इस जीवन में जो धारण किया है, 23 साल पहले हो गया ना, 23 साल पहले उस शरीर का निर्माण शुरू हुआ। अब उसकी पृष्ठभूमि कहां थी? मेरे पिछले जन्म के कार्य और इच्छाएं, और ये सब कौन क्रियान्वित कर रहा है? भगवान। केवल आप ही कर रहे हैं या असंख्य जीवों का कर रहे हैं? सबका अर्थ असंख्य जीव, ठीक है, जो अपने निष्काम, ये बहुत अच्छा है, देखिए, जो अपने निष्काम भक्त को अपने निधि के रूप में रखते हैं, निधि मतलब खजाना, जैसे बचा कर रखते हैं ना ऐसे कर, कितने सुंदर सुंदर अर्थ इसमें लिखे गए हैं ना, कितना सुंदर है ना। एक जो इसमें लिखा है नमो अकिंचन वित्ताया, अर्थ समझते हैं, जो अकिंचन वित्त अर्थात जिनका जगत में कुछ नहीं है, केवल कृष्ण ही जिनकी संपत्ति है, एक, दूसरा जिन जो अकिंचन को ही अपने वित्त के रूप में रखते हैं, जो अकिंचन भक्त हैं वही उनकी संपत्ति है, ऐसे कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, दो अर्थ है, तो उस अर्थ को यहां पे ले रहे हैं अकिंचन वित्ताया, कि अकिंचन भक्तों को, निष्काम भक्तों को ही अपनी निधि के रूप में रखते हैं और उनके क्या देते हैं, उन्हें स्वयं को ही दे देते हैं। सुंदर टीका है, बहुत ही सुंदर टीका है। देखिए आप ये समझिए कि भगवान के गुणों को समझने के कारण शरणागति की भावना आ रही है, भगवान के गुण समझ रहा है कि मैं आपके गुण समझ में आ रहे हैं, तो लगता है कि नहीं, अब मैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप मेरे, आप बढ़िया स्वामी हैं, अच्छे स्वामी, मैं आपकी ही सेवा करूंगा। भौतिक जगत में भी तो देखते हैं ना, कोई कंपनी को देखता है, अरे कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हम सोचते हैं ना हम इसकी सेवा करेंगे, हमें बहुत फायदा होगा। तो भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट होकर के शरणागति का भाव जागृत हो रहा है। मैं समझ पा रहा हूं कि भगवान आप ही हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं और मेरे मित्र के रूप में यहां उपस्थित है, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूं। बहुत सुंदर लाइन है, आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, कितना सुंदर लाइन, ये विश्वास है कि कुछ भी हो जाए आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, इसलिए मैं शरण में ले रहा हूं। बहुत सुंदर है, अमेजिंग, एक लाइन इसकी बहुत अच्छी है टीका की। मेरा यह संशय अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है, यदि यह आपका लक्ष्य है कि धरती का भार समाप्त किया जाना चाहिए और यदि आप मुझ शरणागत भक्त से इस कार्य को करवाना चाहते हैं, तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर करूंगा। और यह कहते हुए अर्जुन अपने खाट पे सो गए नहीं, अपने खाट पे सो नहीं गए, अर्जुन धनुष लेते हुए सबकी खाट खड़ी कर दी, अर्जुन धनुष लेते हुए खड़े हो गए, अर्थात मुझे निमित्त बना के आप जो कोई भी कार्य करना चाहते हैं मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। भक्ति हरिसामृत महाराज एक बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भक्त एक बहुत गर्हित कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है अगर उससे भगवान प्रसन्न हो, और वो कार्य है दूसरों से सम्मान लेने का, लेने का। जब आप समझ में नहीं आया ना, जब हम कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव गुरु बनते हैं तो सम्मान लेना ही पड़ता है उनको, वो ठीक है वो पास ऑन कर देते हैं, लेकिन बाह्य जगत में सम्मान लेना पड़ता है, शिष्यों से सम्मान नहीं लेना पड़ता, सेवा स्वीकार नहीं करनी पड़ती ना चाहते हुए भी। तो किस भाव में, कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे मैं कार्य करूं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, कहने का मैं खाली भाव ये कह रहा हूं कि अब अर्जुन तैयार हो गए, अगर मुझे आपके प्रसन्न करने के लिए अपने गुरुओं की हत्या करनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, मैं अब उसको करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद वह बड़े उद्यम के संग खड़े हो गए सेवा करने के लिए। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम नम्रता का अर्थ है बस रूम के अंदर बैठे रहना और सोचते रहना मैं पतित हूं, नहीं, जो भी भगवान के, भाई भगवान बोल रहे हैं ना, चाहते हैं ना, महाप्रभु चाहते हैं कि प्रचार हो, तो कुछ भी इसके लिए आवश्यक है करने के लिए भक्तों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भगवान के दास हैं। वस्तुतः इस जगत में हमारे लिए कुछ है ही नहीं प्राप्त करने के लिए, केवल कुछ प्राप्त करने के लिए है तो भगवान की प्रसन्नता, तो इस पे करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय लेकर तात्पर्य पढ़ लेना चाहता हूं, अगर आप लोग थक नहीं गए तो, तात्पर्य थक गए, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है, वह कि परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे, एकदम स्पष्ट है, ठीक है। वह आत्मानुशासन ये संयम के लिए बना है, आत्मानुशासन अर्थात अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखे। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है, ये भी स्पष्ट है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, कुछ भी समझाना नहीं है, एकदम स्पष्ट है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि भगवत गीता सुन करके व्यक्ति समझ पाता है कि इसका स्वरूप क्या है। वस्तुतः सारी प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस की है कि हम क्या मान रहे हैं अपने आप को। मान लीजिए, थोड़ा अजीब सी बात लगेगी, अनंत कृष्ण प्रभु कल सोचते हैं मैं तो आतंकवादी हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो आप पहली चीज क्या ढूंढेंगे, गन कहाँ है मैं मजाक कर रहा हूँ। आप कल सुबह उठ के क्या सोचते हैं, 3:30 बजे उठ के स्नान करना है, मंगल आरती जाना है, क्यों भाई, साधु हूं, भगवान का भक्त हूं, भक्ति कर रहा हूं, है कि नहीं। पहली चीज हम जब सुबह उठते हैं तो अपनी पहचान को ग्रहण करते हैं और फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं। पहचान ठीक कर दीजिए, सारे कार्य ठीक हो जाए, बस वही बात यहाँ पे बोले जा रही है, पहचान गड़बड़ सारे कार्य गड़बड़। तो पहचान ठीक हो गया, मैं ईश्वर का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उससे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में या भी आता है, तो हो सकता है कि माया की सेवा करे, परमेश्वर की सेवा करे, या फिर किसी की भी सेवा ना करे, है ना, करना ही पड़ेगा, या तो यानी कि या तो माया की करेगा या फिर परमेश्वर की करेगा। तो इसलिए ये बड़ा ध्यान देना चाहिए हर भक्त को, हर भक्त को, कि इस टाइम मैं किसकी सेवा में लगाऊं, क्योंकि ये जबरदस्त चीज है। जैसे ही कृष्ण की सेवा रुकी तो माया की सेवा चालू है, आप बीच में नहीं है, या तो इधर है या तो उधर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन जबरदस्त। इसलिए भक्ति मतलब भक्तिमय सेवा, सेवा में लगे व्यक्ति, कुछ करे भगवान के लिए मन से, वाणी से, कर्म से। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, सुखी स्थिति। हमारी सामान्य स्थिति क्या है, सच्चिदानंद, शाश्वत, ज्ञानमय, सुखमय। लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। और अद्भुत बात है, हमें ध्यान देना चाहिए कि माया का काम ही है बांधना, जैसे पुलिस का काम ही होता है बंधन में लेके आना, तो अब नियम तोड़ेंगे तो बंधन भी करेंगे और पिटाई भी करते हैं पुलिस वाले, तो उसी प्रकार से माया पिटाई करती अगर उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं तो। इस और माया का प्रपोजल जानते हैं ना, अरे कृष्ण की सेवा करके तुम्हें क्या मिल रहा है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लात मारती हूं, प्रभुपाद ऐसा बोलते। माया यही प्रपोजल देती है, वाई आर यू सर्विंग कृष्णा, कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें थोड़ा मारूंगी। और कहते यस यस माया देवी, वाई नॉट, और हम फिर सेवा में लग जाते हैं। इसलिए ध्यान देना चाहिए, हर बार उसका यही प्रपोजल होता है, और कोई प्रपोजल नहीं, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव कि कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने, ऐसा प्रपोजल होता है। इसलिए बार बार कृष्ण से सुनना पड़ेगा कि माया की सेवा करना हमारा टाइम वेस्ट है, खूब कर लिया अपने और करना। ओके, इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, ये तो स्पष्ट है, अपने को शरीर मानते हुए वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है, यह भी हमने भी पढ़ लिया था, यही मोह कहलाता है। स्पष्ट है, क्लियर है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यानपूर्वक देखिए, स्वेच्छा से अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से मिला देता है। हाँ, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, लेकिन दिमाग विचार करके नहीं, मैं स्वेच्छा से गुरु की आज्ञा पालन करूंगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं, स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा करूंगा, मैं मुक्त हूं भगवान की इसको सेवा करने से मेरा सही, मेरा कल्याण होगा। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, मैं कल आज सुबह बता रहा था कि भाई अगर किसी को जॉइंटिस है तो ठीक है, उसको शुगर केन का जूस, शुगर केन मतलब गन्ने का जूस मीठा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैम्बू का जूस पीने लग जाए। कह रहे भाई अब शुगर केन का जूस तो अच्छा लग रहा है, चलो बांस का जूस निकाल निकाल के पीते हैं, उससे तो कोई लाभ नहीं होगा। ये विश्वास होना चाहिए कि शुगर केन का जूस पीते रहेंगे तो एक दिन हम लोग स्वाद को प्राप्त कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं, बैम्बू जूस इज नॉट एन ऑप्शन, बैम्बू जूस ये है ऑप्शन, क्या विकल्प नहीं है, है ही नहीं विकल्प। तो माया की सेवा करके हम ठीक नहीं हो सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज करके ठीक नहीं हो सकते, कृष्ण की ही सेवा करनी, ठीक है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है, और ये मायावादी लोग प्रचार करते हैं, इसलिए मायावाद को सुनना ही नहीं चाहिए कभी। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। इसे कहा जाता है क्या, विमुक्त माने, मैं तो मुक्त हो गया। ऐसे तथाकथित ज्ञानी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं तो मुक्त हो गया, अब मुक्त होने के बाद भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत। पॉली माइक पे, यस,
कुछ भक्ति भी तो मान लेते अपने आप को, अभी तो मैं बाबा जी जैसा रह सकता हूँ।
नहीं देखिए जब कोई व्यक्ति नहीं देखिए अगर कोई भक्त अपने को बाबा जी मान रहा है तो भगवान नहीं मान रहा है, भगवान का भजन नहीं, वो ठीक है वो कुछ और कर रहा है, उसका अधिकार नहीं है वो करने का, आगे की बात है, लेकिन अपने को भगवान नहीं मान रहा है। भगवान मानना खतरनाक हो जाएगा, भगवान मानेंगे तो फिर सेवा बंद हो जाएगी ना, सेवा नहीं करेगा। वो एक अलग पॉइंट है कि इस जगत में हमारा जो अधिकार नहीं उसके अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, जितना अधिकार है उसके अनुसार ही करना चाहिए, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अपने को ईश्वर नहीं मान रहा। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता है ना, हर चीज में डाउट रहता व्यक्ति। प्रभुपाद जी का तात्पर्य का अलग ही स्वीटनेस है। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंत्य पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। सहमत ये मत यही करना है, आप जो बोल रहे मुझे भी वही करना। यस, इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है, वास्तविक ज्ञान तो अच्छा। एक और बात है, भगवान के अनुसार कर्म करना है भले ही मेरा मन ना करे। मेरा मन आज क्या कहता है, हाउ डू आई फील टूडे, मुझे आज कैसा फील हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। भगवान के अनुसार शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य करना, ठीक है। हाँ बोलिए।
इस जगत को हॉस्पिटल के अनुसार समझना चाहिए, तो हॉस्पिटल में आपके अनुसार जो है दवाइयां डॉक्टर नहीं देता है।
हाँ, आपको कौन सी दवा पसंद है, कौन से कलर की दवा पसंद है, किसका टेस्ट पसंद है जरा बताइए, आपको मीठी अच्छी लगती है नमकीन अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं पूछते। हाँ, आपको स्नैक्स के संग दिया जाए, ये सब नहीं पूछते। और कब कौन सी दवा देनी है और कैसी देनी है वो डॉक्टर देगा, और कभी कभी इंजेक्शन भी देता है, दर्द भी होता है, ऑपरेशन भी करता है। यस, तो इस जगत में सम्मान मान सम्मान सुख दुख जो कुछ है वो भगवान अब देंगे है, देते हैं ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है। एनीहाउ, मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह है समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, स्पष्ट है, लेकिन जीव अपने को स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये बात अब बहुत पे वर्णन किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो हम जो टीका से उठा रहे हैं वो ये है कि कोई लोग भोग करने के लिए देवताओं से मांगते हैं और देवता भी सोचते हैं हाँ ठीक है मैं दे देता हूं, उसको क्या दिक्कत। तो दोनों ही लोग अपने आप को इस प्रकृति का प्रभु या स्वामी मान रहे हैं, ये दिक्कत। वह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कर्म के कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी हैं जो ज्ञानमय हैं और सर्व संपत्तिवान है। एकदम स्पष्ट आप देख रहे हैं प्रभु, वही बात टीका की प्रभुपाद यहां पे बोल रहे हैं। समझ जाना चाहिए कि भगवान ज्ञानमय है, सर्व संपत्तिमान है और उनकी सेवा कर रही है। वे अपने भक्तों को जो चाहे जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सभी के मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रखते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक, याद आ रहा है आपको, जीवों को अपनी इच्छा से काल से प्रकृति से शरीर देते हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। एकदम मैं इसे समझा नहीं रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको ऐसे में समझा दिया था। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, याद आ रहा है, निष्काम भक्त जो उनकी निधि है उसको भगवान स्वयं, ये अद्भुत बात है। भगवान यहां भक्त को आत्मसमर्पण कर रहा है, भगवान कहते हैं तो मेरी अद्भुत है ना, भगवान को हम भक्त बोल रहे हैं आप मेरी रक्षा करिए, भक्त कहते हैं आप मेरी रक्षा कीजिए, है कि नहीं, छोटे बाल गोपाल के रूप में यही बोल रहे हैं ना। माता यशोदा सोचती है खिलाएंगे नहीं तो ये मर जाएगा, तो इस प्रकार से आत्मसमर्पण का भाव रहता है। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवद गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया, अर्थात स्वरूप का जो मोह था अवबोध था वो समाप्त हो गया, अबोधता समाप्त हो गई। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। ये भी आया था ना, भगवान के रूप में है और मेरे मित्र के रूप में यहां पे है। अतएव भगवद गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि जब वह भगवान के स्वरूप को समझता है, भगवान के स्वभाव को, भगवान की शक्तियों को समझता है, तो इस जगत के आश्रय को त्याग करके भगवान की शरण जाता है। बहुत जरूरी है और ये हर व्यक्ति को यहां जो उपस्थित है व्यक्तिगत रूप से समझना है, क्योंकि शरण हमने लेनी है, मैंने लेनी है, एक्चुअली हमने नहीं मैंने लेनी है, हम सब ले रहे हैं लेकिन मुझको शरण लेनी है। मेरे पास समझ में आ रही, ठीक है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये लाइन थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जबरदस्ती मारना चाहते थे। जो जनसंख्या सही नहीं थी, इंग्लिश में क्या लिखा था देख सकते हैं, जो जनसंख्या पाप में लगी थी उसको कम करने के लिए। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि जितनी जनसंख्या है उसका 10 गुना भी हो जाएगा तो भी धरती सहन कर सकती है, लेकिन उस समय धरती पे भूभार बने हुए थे, पाप कर रहे थे, दुष्ट लोग थे, उनको कम करने के लिए। तो थोड़ा सा ये अनुवाद ठीक किया गया है लेकिन उसको थोड़ा सा समझना सही, ठीक प्रकार समझना चाहिए।
जिहाद के नाम पे आतंकवादियों को यही सिखाते हैं कि जो जनसंख्या कम हो गई है वो आप भगवान का ही खुदा का ही काम कर रहे हो मार के। हाँ। तभी जो जो युवक हैं वो इस काम में भटकते हैं जिहाद के नाम पे कि
लेकिन
आप मारो और आप सही।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो है कौन। वहां तो शुरू होना चाहिए ना, अर्जुन
गुमराह करते हैं ना धर्म के नाम पे, गुमराह करते हैं वो जिहाद के नाम पे।
अननेसेसरी इंक्रीज, अनावश्यक वृद्धि, वही मतलब अनावश्यक करते ही है कि वो सब पाप कर रहे थे, ठीक है। तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। एकदम टीका में भी बात बोली गई थी, इसलिए स्पष्ट है। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। तो भक्त को हर प्रकार का उद्यम करने के लिए तैयार रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, यही शरणागति है। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।